नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एनके फैक्ट्स, सुनो और जानो, और मैं हूं आपके साथ नेहा। कुछ बीमारियों को साइलेंट किलर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां पहले कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन वे घातक हो सकते हैं। ये दुर्लभ नहीं है कि अस्पताल लाए जाने पर मरीजों को पहले से ही जटिलताओं का अनुभव हो। अच्छे आहार का पालन करना, स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना और संपूर्ण जीवन शैली प्रथाओं में निवेश करना ही आपके समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, और ऐसा ना करने पर पुरानी बीमारियां हो सकती है जो हमेशा बनी रहती है और अचानक जटिलताएं पैदा कर सकती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिन पर अतिरिक्त ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ को इसी कारण से साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है कि वे किसी भी समय गंभीर हो सकते हैं और कभी कभी अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही 10 साइलेंट किलर बीमारियों के बारे में जो हो सकती है कभी भी घातक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, सर्वकालिक शीर्ष साइलेंट किलर्स में से एक माना जाता है। यह तब होता है जब रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त का बल लगातार बहुत अधिक होता है, जिससे बहुत अधिक क्षति होती है। अगर इसे नियंत्रित या प्रबंधित नहीं किया गया तो ये दिल का दौरा और स्ट्रोक सहित हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित अधिकांश लोगों में तब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते जब तक कि दबाव खतरनाक रूप से अधिक ना हो। नंबर 2, डायबिटीज, मधुमेह से तात्पर्य तब होता है जब किसी रोगी के रक्त प्रवाह में बहुत अधिक ग्लूकोज या रक्त शर्करा होती है। ये या तो तब होता है जब अग्नाशय, जिसे पेंक्रियास भी कहते हैं, वह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। मधुमेह एक चिंताजनक स्वास्थ्य बीमारी बन जाती है, मुख्यतः क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्यों? ज्यादातर मामलों में मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये बीमारी है, और लक्षण तभी सामने आते हैं जब बीमारी चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाती है। नंबर 3, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार कोरोनरी धमनी रोग CAD कोरोनरी धमनियों का संकुचन या रुकावट है जो आमतौर पर प्लाक के निर्माण के कारण होता है। कोरोनरी धमनियों को आपके हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करनी होती है, लेकिन जब इन धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है तो ये सीमित हो जाएगा कि आपके हृदय तक कितना रक्त पहुंच सकता है। इसे भी साइलेंट किलर के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि लोगों को बिना किसी लक्षण के कई वर्षों तक CAD हो सकता है, जब तक कि उन्हें दिल का दौरा न पड़ जाए जो घातक हो सकता है। CAD की ओर ले जाने वाले प्लाक के निर्माण में कई साल, यहाँ तक कि दशकों का समय भी लग जाता है। CAD के लिए कई जोखिम कारक है, हालांकि कुछ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप जीवन शैली में बदलाव करके नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि अपने आहार में संतृप्त वसा या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को सीमित करना, शारीरिक गतिविधियों में सुधार करना, पर्याप्त नींद लेना और सिगरेट या तंबाकू के उपयोग में कटौती करना। नंबर 4, कैंसर। कैंसर एक जाना पहचाना साइलेंट किलर है, क्योंकि ज्यादातर बार ये बिना किसी संकेत के, बिना किसी बाधा के वहीं पड़ा रहता है और चुपचाप महीनों या वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट संकेत या लक्षण के बस फैलता रहता है, और फिर अचानक ये आप पर हावी हो जाता है और अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर किसी के आनुवंशिक कारकों के बाहरी एजेंटों जैसे कि विकिरण, तंबाकू का उपयोग, तंबाकू का धुआं, पीने के पानी के दूषित पदार्थ जैसे आर्सेनिक, रासायनिक कार्सिनोजेन और वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों से संक्रमण के कारण होता है। कैंसर के विकास के लिए उम्र बढ़ना भी एक कारक हो सकता है, क्योंकि कैंसर की घटनाएं उम्र के साथ नाटकीय रूप से बढ़ती है। सबसे अधिक संभावना विशिष्ट कैंसर के खतरों के बढ़ने के कारण होती है जो उम्र के साथ बढ़ते हैं। WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार कैंसर के सैकड़ों प्रकार हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या कहे स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर, ब्लड कैंसर यानी रक्त का कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर यानी अग्नाशय कैंसर, लीवर कैंसर यानी यकृत कैंसर, असोफोजियल कैंसर यानी ग्रासनली कैंसर, ओवेरियन कैंसर यानी डिंब ग्रंथि कैंसर जैसे इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रत्येक कैंसर के अपने शुरुआती लक्षण थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए यह साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। नंबर 5, कार्डियोमायोपैथी। हृदय की मांसपेशियों के रोगों को कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। आपको अपने माता पिता से विरासत में मिले जीन के कारण या किसी संक्रमण के कारण या कुछ ऐसे कारणों से जिन्हें अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, हृदय की मांसपेशियों में समस्या हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी एक और साइलेंट किलर है, क्योंकि आपके पास कभी भी कोई संकेत या लक्षण नहीं हो सकते हैं। लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, क्योंकि हृदय कमजोर हो जाता है और आपके हृदय विफलता होती है, जहां आपका हृदय पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थ होता है। आप हृदय विफलता या कहे हार्ट फेलियर की पहचान कुछ ऐसे कर सकते हैं: शारीरिक परिश्रम करने पर तेज सांस फूलना, थकान आना, टखनों, पैरों, टांगों और पेट में सूजन आना या अनियमित दिल की धड़कन होना। नंबर 6, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के पतले और कमजोर होने की एक स्थिति है, जिससे वे आसानी से टूट जाती है। ये वृद्ध लोगों में अधिक आम है, विशेषकर महिलाओं में। आपको हड्डी टूटने के बाद ही अंतिम निदान मिलता है और फिर इस स्थिति को रोकने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है या कहे अपूर्णीय क्षति हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर आमतौर पर कुल्हे, रीढ़ और कलाई में होते हैं। वही भारतीय महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित होने का खतरा अधिक होता है। हो सकता है कि इससे बचना आपके लिए संभव ना हो, लेकिन आप प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और खनिज युक्त स्वस्थ आहार का सेवन करके जटिल दावों को रोक सकते हैं। बहुत सारे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें और अगर आप पोस्ट मेनोपोज में हैं, तो प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 7, फैटी लिवर डिसीज। फैटी लिवर रोग के दो मुख्य प्रकार है: नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस NASH और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग तब होता है जब आपके शरीर में वसा जमा हो जाती है, लेकिन लीवर को कोई नुकसान नहीं होता है। और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस वसा और लीवर को नुकसान करने के साथ होता है। NASH यकृत रोग का अधिक खतरनाक रूप है और ये सिरोसिस में बदल सकता है, यानी कि यकृत में स्थायी घाव और क्षति। अत्यधिक शराब का सेवन लीवर की बीमारियों के विकसित होने का एक बड़ा कारण है। उपचार में दवाएं, जीवन शैली में कुछ बदलाव और आहार शामिल है। अगर लीवर की बीमारी सिरोसिस में बदल गई, तो एकमात्र उपचार लीवर प्रत्यारोपण है, जिसे लीवर ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। नंबर 8, चगस डिजीज। चगस रोग प्रोटोजोअन ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका में कीड़ों द्वारा फैलने वाली एक आम बीमारी है। चगस रोग भोजन में कीड़ों के मल से, जन्म के दौरान माताओं से शिशुओं में या किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त उत्पादों या अंगदान से भी फैल सकता है। इससे चकत्ते, दिल की धड़कन और तेज बुखार हो सकता है। वहीं अगर तुरंत उपचार न किया जाए, तो चगस जीवन भर की स्थिति बन सकती है, जो बहुत जटिलताएं पैदा करती है। नंबर 9, कोलन कैंसर। कोलन कोलोरेक्टल के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब बड़ी आंत में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है, जिससे आंतरिक दीवारों पर एक घातक ट्यूमर बन जाता है। अधिकांश कोलन कैंसर पॉलिप के रूप में शुरू होते हैं, जो एक छोटी वृद्धि होती है जो मलाशय या कोलन की आंतरिक परत पर दिखाई देती है। सभी पॉलिप्स कैंसर नहीं बनते हैं और आमतौर पर दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला एडिनोमेट्स पॉलिप्स, जो कैंसर में बदल सकते हैं, और दूसरा हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो अधिक सामान्य होते हैं और आमतौर पर कैंसर नहीं होते हैं। यदि कोलन कैंसर की जल्द से जल्द खोज और इलाज नहीं किया जाता है तो कैंसर कोशिकाएं फैल सकती है और लिम्फ या रक्तवाहिकाओं, लिम्फ नोड्स और शरीर के अन्य हिस्सों में बाहर की ओर बढ़ सकती है, जो स्वस्थ ऊतकों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है और कई स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बनती है। कोलन कैंसर एक वंशानुगत मुद्दा भी हो सकता है और वृद्धावस्था, खराब आहार, गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, मधुमेह, धूम्रपान और शराब सहित अन्य कारक भी कोलन कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कोलन कैंसर के कारण अलग अलग हो सकते हैं और ये कई चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ट्यूमर का स्थान और आकार और ये फैल गया है या नहीं। इनमें दस्त, कब्ज, मल परिवर्तन, मलाशय से रक्तस्राव, मल में रक्त, दर्दनाक मल त्याग, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, पेट में दर्दनाक एंठन और गैस तथा एनीमिया जैसी आयरन की कमी शामिल है। ये लक्षण अक्सर कोलन कैंसर के शुरुआती चरणों में नहीं होते हैं और यही कारण है कि बार बार आंत्र कैंसर, जिसे बाउल कैंसर भी कहा जाता है, इसकी जांच कराना बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 10, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक गंभीर नींद विकार है जहां लोग सोते समय जोर जोर से सांस लेते हैं। इससे तेज खर्राटे, दिन के दौरान अत्यधिक थकान और बहुत कुछ हो सकता है। गंभीर स्लीप एपनिया वाले मरीजों में नींद के दौरान अचानक मौत और स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, जो इसे एक साइलेंट किलर भी बनाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सबसे आम प्रकार है, जहां नींद के दौरान आपके वायु मार्ग बार बार पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। स्लीप एपनिया के हल्के मामलों के लिए जीवन शैली में एक निश्चित बदलाव ही काम आ सकता है, जैसे वजन कम करने, अच्छा खाने, धूम्रपान छोड़ने और नाक की एलर्जी के लिए सही उपचार लेने से आपको स्थिति से छुटकारा पाने या इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह जानने के लिए अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें कि स्लीप एपनिया का मामला कितना हल्का या गंभीर है, ताकि वे तद अनुसार उपचार लिख सके। आशा करते हैं आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही हमें रेटिंग देना बिल्कुल भी मत भूले। ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।